इस प्रकार कृष्ण उच्च शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं महा ऋषियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है तथापि ये शक्तियां सीमित हैं, अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंग शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं।
यहाँ पर अभी जो बारह मंत्र से प्रारंभ हो रहा है चौदहवें मंत्र था, जैसे हमने आपको नौवें मंत्र में बताया था कि केवल दो शब्दों का अंतर है, वहाँ विद्या विद्या था, यहाँ संभूति असंभूति, लेकिन ज्ञान में अंतर है। जैसे यहाँ शब्द संभूति और असंभूति क्या है इसको प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ में समझाया है कि महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि तो उसको बात कर। थैंक यू। हमारे वचन ये कभी झूठे नहीं हो सकते, कम से कम एक ये वचन कि हर रोज मोबाइल बजेगा ही। तो संबुद्धि और असंबुद्धि क्या है प्रभुपाद समझा रहे हैं बहुत सारे शब्दों में। असंबुद्धि मतलब उस स्वतंत्र जिनका अस्तित्व नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं?
असंभूति।
और संभूति किसे कहते हैं? पूर्ण स्वतंत्र है, उन्हें संभूति अर्थात भगवान। तो असंभूति और संभूति शब्द अगर समझ जाए तो आगे के सारे जो मंत्र हैं उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो अंतर क्या है नौ से, नौ दस ग्यारह और बारह तेरह चौदह में, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? अगर सभी वही कहा गया है ज्ञान कर्म प्रवेश शांति ये संभूति उपासते वह ये विद्या उपासते, किस दृष्टि से भेद है? तो बारह और चौदह में पूजन की दृष्टि से भेद दिया जा रहा है, पूजक उपासना की दृष्टि से। पहले ज्ञान विद्या विद्या का वर्णन था, तो विद्या ज्ञान की दृष्टि से भेद था, अब उपासना की दृष्टि से। तो सही, जैसे विद्या क्या है अविद्या क्या है ये हमने सीखा, और कैसे जीवन में उसका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बैलेंस होना चाहिए ना, ये भी हमने कहा दोनों पता होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा ना कि भौतिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए और आध्यात्मिक जगत का भी, और जीवन में हमें बैलेंस बनाना चाहिए, ये सीखा था ना हम लोगों ने। तो जीवन में जब संतुलन नहीं होगा तब तक हम मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। तो जब विद्या और अविद्या की चर्चा हुई, यहाँ देख सकते हैं, तो विद्या और अविद्या की चर्चा हुई तो दोनों का संतुलन चाहिए था। तो दोनों का संतुलन अर्थात विद्या क्या है वो हमें किससे सीखनी है, गुरु साधु शास्त्र से हमें परंपरा का, आपको ध्यान प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि भगवान शास्त्र देते हैं, आचार्यों को भेजते हैं और स्वयं भी आते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र से हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जो बुरा सौदा है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। विद्या गुरु साधु शास्त्र से ग्रहण करना, अविद्या को जानकर, इस भौतिक जगत को जानकर, इस भौतिक जगत से हमारा संबंध नहीं हो सकता इसको समझना, हमारी स्थिति कंपैटिबल नहीं है, मतलब असंगत। थैंक यू। असंगत ऐसे शब्द समझ नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा, मतलब केवल हमारे केमिस्ट्री मैच नहीं करती, हमने बताया था। तो ये असंगत है, इसको जानना और इसके अनुसार हमारा जीवन, जैसे भौतिक और आध्यात्मिक को बैलेंस करना मतलब क्या है, हमें शरीर और मन को बनाए रखना चाहिए, अच्छी अवस्था में रखना चाहिए ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये भी है कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, या शरीर को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये शरीर हमारा तपस्या के लिए नहीं बना है, अभी ये जो कलयुग का शरीर, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, लेकिन अभी का जो शरीर है वो बहुत कड़ी तपस्या के लिए नहीं बना है। हिमालय में जाकर आप खड़े हो जाए वहाँ पर संभव नहीं है, तो हमारे शरीर किस लिए बना है, मनुष्य जीवन किस लिए है, तपस्या। लेकिन वो तपस्या जो आचार्यों ने बताई है उस तपस्या को करना चाहिए। मन से की गई तपस्या कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती। ये जान लीजिए कि अचानक एक दिन आपके मन में आया कुछ नहीं, कड़ी तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, तुम महाराज ने किया, हिरण्यकश्यप जैसा असुर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तपस्या क्या है कलयुग में, आचार्यों के द्वारा बताए गए शब्दों का पालन जीवन में करना, आचार्यों के उपदेशों को जीवन में उतारना, ये हमारे लिए तपस्या है। अगर उतना भी हम कर सकते हैं तो वही हमारे लिए कृष्ण प्राप्ति का मार्ग है, हमें और कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आचार्यों के बताए मार्ग पर चलना, आचार्यों के उपदेशों को जीवन में उतारना, और उन उपदेशों को जीवन में उतारते हुए कड़ाई से कृष्ण की ओर बढ़ना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि उसके लिए हमें अहंकार को त्यागना होता है, इच्छाओं को त्यागना होता है, तो इसलिए ये तपस्या हमें करनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक तपस्या करें, तो शरीर को स्वास्थ्य को अच्छे बनाए रखना चाहिए और अभ्यास के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो हम लोग पूरा सौदा है उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने विद्या अविद्या के रूप में समझा था। अब इस श्लोक से, इस मंत्र से, 12-13-14 मंत्र में हम लोग उपासना की दृष्टि से समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सही है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, समझ लिया। उपासना किसकी सही है और किसकी नहीं, इसका वर्णन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं या निराकार की उपासना करते हैं, उपासक कई प्रकार के होते हैं, उनको भी उपासक कहा गया है। तो पहले है देवी देवता के उपासक, तो उनको क्यों उपासक कहा गया है, उनको क्यों स्वीकार किया, भगवद गीता में उनका वर्णन है ना कि जो जिस तरह की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, यान्ति देवव्रतान देवाय पितृव्यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेच, देवी देवता के उपासक हैं। दूसरे हैं जो निराकार के उपासक हैं, ये भी उपासक कहे गए हैं। और फिर आगे भगवान या परमात्मा और भगवान के उपासक आएंगे। एक होते हैं निराकार के, दूसरे विश्व रूप के उपासक भी हैं, और फिर परमात्मा और भगवान, तो ऐसे अलग अलग उपासक हैं। तो अब यहाँ पर प्रमुखतः देवी देवताओं के उपासक और जो निराकार के उपासक हैं उनका वर्णन करते हुए सही वर्णन को हम लोग सुनेंगे। तो इसीलिए संभूति और असंभूति शब्द यहाँ प्रभुपाद ने समझाया, और ये यहाँ पहले ही बता रहे हैं कि भगवद गीता में बताया है भगवान ने कि मुझे कौन जान सकता है। इस श्लोक जो यहाँ भगवद गीता का कोट किया प्रभुपाद ने, तो उसमें क्या बताया, कौन जान सकता है मुझे, कौन जान सकता है, इस श्लोक में कहा गया। इस श्लोक के अनुसार कौन जान सकता है, मेरे मेरे हाँ कौन जान सकता है इसके अनुसार, केवल भगवद गीता के श्लोक की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया कि भगवद गीता में श्लोक में क्या कहा, कोई नहीं जान सकता, सरल है ना। देवता नहीं जान सकते, महर्षि नहीं जान सकते, तो फिर क्या भगवान के अंदर में विदु सुरगणा प्रभव न महर्षय, फिर हम लोग जान सकते हैं। तो ये क्यों कहा भगवान ने कोई नहीं जान सकता, अहम आदिर ही देवानाम। ये महत्वपूर्ण क्यों प्रभुपाद ने ये शुरुआत में लिखा, अभी असंभूति असंभूति समझा रहे हैं, देवताओं का वर्णन करना, ये क्यों पहले लिख दिया कि कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसका कारण ये है, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, क्यों नहीं मुझे समझ सकते, वो समझना महत्वपूर्ण है, नहीं समझ सकते वो तो ठीक है, क्यों नहीं समझ सकते, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, सबका मैं आदि हूं, सब कुछ मुझसे आ रहा है, तो क्योंकि मुझसे आ रहा है तो अंश है, वो अपने स्रोत को अपने पूर्ण को कैसे समझ सकता है? उसको समझने के लिए उसे पूर्ण के पास जाना होगा, उनसे ही समझ सकता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया। तो इसको समझाने के बाद अब आगे की चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। श्री प्रभुपाद ने सबसे पहले भगवद्गीता का यही श्लोक पढ़ के कि भगवान सबके आदि है, न महर्षि समझ सकते हैं, न ऋषि समझ सकते हैं, न देवता समझ सकते हैं, सूर्यगण न मैं विदु, विदु यानी ज्ञान, तो मुझे न मैं, मेरा विदु मेरा ज्ञान नहीं हो सकता, किसको? सूर्यगण महर्षि जो भी हमको नहीं हो सकता, क्योंकि अहम आदि। तो ये बात हमें मन में स्थापित कर लेनी चाहिए कि कृष्ण आदि है। तो इस चीज को अपन आगे समझेंगे तो बड़े सरलता से देवी देवताओं और ये जो निराकार के उपासक हैं उनके बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़े।
अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम की को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिंतन मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है।
परम के नकारात्मक स्वभाव मतलब वे कहते हैं कि हर चीज उसको नैतिक नैतिक कहा जाता है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ऐसे वो भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे तो कैसे पहुंचेंगे? समझिए हम यहाँ से शुरू करें, पर्दा भगवान नहीं है, ये लैपटॉप भगवान नहीं है, ये प्रोजेक्टर भगवान नहीं है, ये स्टील का ये भगवान नहीं है, तो नहीं है नहीं है नहीं है करके भगवान क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो इसको कहा जाता है नकारात्मक, नेति नेति नेगेटिव से सब नहीं है नहीं है। तो लेकिन कैसे पहुंचोगे भगवान तक? तो इसीलिए उनका क्या अंत में उनका क्या सार निकलता है उनके नेति नेति से? भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने देखी रूप में वो भगवान नहीं है। तो इसका अर्थ क्या, भगवान कौन है जिनका कोई रूप नहीं है? बड़ा सरल है ना, हर चीज को वो नेति कहते हैं, ये रूप देखा वो देखा, मनुष्य है ये है वो है, ये भगवान नहीं है। तो जहां भी रूप आया होने का नहीं, तो फिर उनके अनुसार भगवान कौन हुए जिनका रूप नहीं है? सरल हो गया। तो इसको कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टि से भगवान तक पहुंचने का। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आप ये समझ सकते हो उससे कि भगवान कौन नहीं है, लेकिन भगवान कौन है ये कैसे समझोगे? जैसे हमने ये कह दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें जानना है, तो हम अन्य व्यक्तियों से कह सके ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन वो कौन है ये कैसे जानोगे? ये नकारात्मक दृष्टि से जाना नहीं जा सकता। तो क्योंकि वो सकारात्मक या भक्ति करते नहीं है, तो इसीलिए वो भगवान को निराकार मान लेते हैं, क्योंकि जितने भी रूप वो देख रहे हैं वो कह रहे हैं भगवान नहीं है। तो वो भगवान के नकारात्मक दृष्टि को यह समझ कर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जो सही मार्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य को अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे।
तो ये कल्पना कर सकता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। कल्पना कैसे करता है? अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ऐसे होंगे। तो जब ऐसे होंगे कहा जाता है कल्पना है। आपको व्यक्ति का पता ही नहीं है कि वो कैसे है, तो आप कैसे कल्पना करोगे? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें राधा चरण प्रभु को हम जानते ही नहीं है, हमें किसी ने कहा कि सूरत में राधा चरण प्रभु रहते हैं, तो हम देखना शुरू करें कि ये भक्ति विनोद प्रभु, ये राधा चरण प्रभु नहीं है, ये राधा चरण प्रभु नहीं है, ये राधा चरण प्रभु नहीं है, ठीक है वो बात सही है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि राधा चरण प्रभु को? फिर हम अपनी कल्पना करेंगे, क्योंकि ये ऐसे 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 नहीं दिखते हैं, तो बहुत लंबे चौड़े होंगे, ये हमारी कल्पना है। तो किसने कहा आपको? तो इसी तरह भगवान कि भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, हर चीज जो दिखने भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान बड़े विशाल है, तो वो क्या होंगे? निराकार। तो इस तरह ये कल्पना है, क्योंकि उन्होंने क्या कल्पना कर ली, अच्छा आपने निराकार को देखा नहीं तो आपको कैसे पता कि भगवान निराकार है, सही है? तो ये कल्पना हो गई, हमने भगवान को देखा है, ऋषियों ने भगवान को देखा है, वो कहते ये भगवान है, तो सही है, देख रहे भगवान, हमने राधा चरण प्रभु को देखा, अब हम कह सकते हैं कि राधा चरण प्रभु। लेकिन हमने कहा कि भगवान निराकार है, आपने कहा देखा कि भगवान निराकार, कहीं देखा भगवान को निराकार? तो ये कल्पना मात्र है, क्योंकि हम देख नहीं सके इसीलिए भगवान निराकार है, ये कल्पना। हाँ, आपने अगर देख लिया कि भगवान निराकार है तब आप प्रमाण दीजिए, क्योंकि कल्पना मात्र है। ठीक है, आगे बढ़े।
ऐसी निषादात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है, अतः वे भी सापेक्ष हैं। परंतु इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता।
तो अगर कल्पना भी करेंगे तो आपने जो कल्पना कर ली भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते, चलो बड़ी मेहनत की तुमने कल्पना तो की, कम से कम मेरी क्या कल्पना की कि मैं निराकार हूँ, ठीक है मैं निराकार भी हूँ, आज ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकोगे। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान उनकी इतनी मेहनत को भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ तुमने ये तो कम से कम कहा कि मैं भौतिक नहीं हूँ, इन तत्वों में नहीं हूँ, तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो ठीक है तुम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक आ सकते। अच्छा, क्यों ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, ये लोग परे क्यों नहीं जा सकते इसके? हाँ, क्योंकि भगवान को निराकार मान रहे हैं और उनके लिए वही परम है, उसके परे कुछ नहीं है। तो जब उसके परे कुछ नहीं है वो जाने की इच्छा ही नहीं करते, या वो जानने की इच्छा ही नहीं करते, तो इसीलिए उनके लिए उतना ही चीज है। जब उसके परे भी अच्छी चीजें हैं ये हमें पता ही नहीं, तो इस तरह से ये लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़िए। हाँ जी, सकारात्मक निराकार जैसे सापेक्ष निरपेक्ष है, उनको ये हम ये कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नेगेटिव भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हिंदी में समझने के लिए, हाँ निरपेक्ष नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेट करना, नहीं थी नहीं थी, नहीं है नहीं है नहीं है, ये नेगेटिव चीज है।
ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वदा विलोम है, अतः वे भी सापेक्ष।
हाँ, ये जो निरपेक्ष है, नेगेटिव चीजें हैं जो बताई जा रही हैं यहाँ पर, तो वो केवल जो भगवान का रूप है उसके विलोम है, वो सही नहीं है, मतलब विरोधी है, ये लिखा गया है ना वहां पर। तो जो भौतिक क्वालिटियां हैं, भौतिक चीजें हैं, वो भगवान के विलोम है और वो भी सापेक्ष है, कही गई है, मतलब सच नेगेटिव क्वालिटीज। कौन सी सच नेगेटिव क्वालिटीज? कि भगवान के ऊपर के हम ये नहीं है, वो ये नहीं है, भगवान निराकार है, तो ये सारी चीजें जो है भगवान का कोई गुण नहीं है, निर्गुण निराकार है, तो ये जो नेगेटिव या निरपेक्ष चीजें कही गई हैं वो केवल जो सत्य है उसके विलोम है, वो उल्टी है, क्या क्या विरोधी है, राइट, विरोधी की गई। तो ऐसी ये जो भौतिक गुण हैं ये भी सापेक्ष हैं, अर्थात भगवान का जो ब्रह्म रूप है, हालांकि क्योंकि भौतिक जगत से परे है तो वो भगवान का रूप है। जैसे ब्रह्म है, ये ब्रह्म कोई भौतिक चीज नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि ये भौतिक नहीं, जैसे हमने कहा भगवान का रूप नहीं हो सकता, ये रूप नहीं हो सकता, तो कम से कम ये सही है कि भगवान का ये रूप नहीं हो सकता, तो वो सापेक्ष में आ गया कि कम से कम हाँ ये उनका ज्ञान सही है कि वो भौतिक नहीं हो सकते, तो भौतिक चीजों के विरोधी है उनका ज्ञान, मतलब वो भौतिक नहीं हो सकते, ये तो सही है, तो इस चीज को कि वो सापेक्ष है, वो सही है, रिलेटिव नॉलेज है, लेकिन वो ही भगवान है, वो पूर्ण नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्योति ये भगवान का हिस्सा, ये सही है, गलत नहीं, निराकार भगवान का एक रूप है, ये गलत है, सही है, सही है, लेकिन निराकार ये जो है भौतिक जगत के परे है, ये जो नेगेटिव चीजें इनके परे है वो भी सही है। तो नेगेटिव का विरोधी है इसीलिए वो पॉजिटिव है, भगवान है, भगवान का रूप है, मतलब उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति है उसमें किसी चीज की भौतिक नेगेटिविटी नहीं है, तो वो भी भगवान है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ जी।
ऐसा जो जान ही नहीं सकते कोई देवता कोई ऋषि कोई सुर असुर, तो हमने कैसे जाना कि भगवान सगुण है और भगवान
भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है। तो देवता नहीं जान पाए, इतने बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, तो कौन जान पाए जिन पर भगवान ने अपनी कृपा की और उनको ज्ञान दिया आचार्य को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। अपने बल पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, घूम रहे थे ऊपर से नीचे तक। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जो कमल की डंडी थी उसमें ऊपर से नीचे तक घूम रहे थे, अंधकार था, देख रहे थे क्या है मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्यों जन्मा, कुछ नहीं पता, अकेले हैं पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे तक जा रहे। उस समय भगवान ने उनको तपह शब्द कहा, जिसे भागवत में पहले ही कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहियन्ति। भगवान मोह में डालते हैं किनको, सारे देवताओं को, लेकिन ज्ञान की वही देते हैं। तो कैसे हमें पता चला कि भगवान ये सगुण है या भगवान का रूप है या कृष्ण भगवान है, भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया। परंपराएं इसीलिए चाहिए कि भगवान ने ज्ञान दिया, उनकी कृपा आई तब हम समझ पाए, नहीं तो अपने बल पर ना देवता समझ सकते हैं ना बड़े बड़े ऋषि समझ सकते हैं। अब यहाँ ऋषियों का वर्णन जब आता है तो आप यहाँ सोचिए कि ऋषि नहीं समझ पाए तो हमने कैसे समझा। तो ये उन ऋषियों का वर्णन नहीं है जिन्होंने परंपरा में सही दृष्टि से भगवान को समझ लिया। यहाँ उन ऋषियों का, बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं, जैसे कई बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं लेकिन भगवान को नहीं जान पाते। चार कुमार भगवान को नहीं समझ सके जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। जिस दिन उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के सुगंध ले ली, उससे उनको भगवान की कृपा प्राप्त होकर भगवान को समझ पाए। ये बात है, इतने बड़े होते हुए चार कुमार काफी बड़े ऋषि माने जाते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते थे, भगवान की कृपा हुई तब वो जान सके। तो हम इसलिए जान सकते हैं क्योंकि भगवान की कृपा आचार्यों के द्वारा हम तक आ रही है। आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर आप प्रभुपाद के आंदोलन में नहीं होते और आप कहीं होते जहां आपको कहा जाता कि दरअसल भगवान निराकार है या भगवान आप ही हैं, आप ये बात समझ पाते कभी कि भगवान साकार है? आप इस्कॉन के भक्तों से आर्ग्यू करते हैं, वाद विवाद करते कि आप कैसे कह रहे हो कि ये निराकार नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो आप क्यों समझ पाए हैं इतनी सरलता से प्रभुपाद की कृपा, इसको समझिए। यस प्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य का
जो वर्णन है आचार्य,
हाँ उनका वर्णन है कि किस तरह से उनका अच्छी बात है। नहीं बोली बोली
भट्टाचार्य को शास्त्र और अनेकों सन्यासी के उनके शिष्य थे, उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था, भगवान को नहीं पहचान पाते तो शास्त्र
में देते थे कि भगवान है, भागवत वर्णन आता है इत्यादि की, तो गोपीनाथ आचार्य उनके शारीरिक वर्णन यही कहा कि आप अपनी खाली बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, शिष्य ज्ञान से जब तक भगवान के पास कृपा नहीं होगी। सारभौम आचार्य बोले कि आपके पास ये क्या प्रमाण है कि आप पर भगवान की कृपा है, तो उन्होंने कहा आपको समय में आ जाएगा जब आप पर भगवान की कृपा होगी। कोई चैतन्य महाप्रभु को विशेष कृपा प्रदान की और पहचान पाएगी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है, वैष्णव की कृपा से भगवान के पास समझ सकते।
यस, बहुत अच्छा। तो उस समय था जब चैतन्य महाप्रभु आए और सारभौम भट्टाचार्य को वेदांत सिखाना चाहते थे, ये मैं इसको सिखाऊंगा, ये सन्यासी इतना यंग है 24 साल में है, ये इसमें ले लिया ये खत्म हो जाएगा इसका, और इसको मैं अच्छा और ऊंचा सन्यास का स्थान दूंगा, ये जो भारतीय इतना अच्छा नहीं माना जाता, मैं थोड़ा और ऊंचा कर दूंगा। आचार्य किसकी बात कर रहे हो आप, किसको ऊंचा करने का, जानते हो कौन है? तो उस समय का ये सम्मानित प्रभु जी ने बताया कि उनके ऊपर कृपा हुई इसीलिए समझ सके। और जब सार्वभौम के ऊपर भी कृपा की भगवान ने, बहुत चर्चा हुई, विशेष करके जब आत्माराम श्लोक की चर्चा हुई, 7 दिन तक महाप्रभु सुन रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य सुना रहे थे, वेदांत महाप्रभु से कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जब सुना 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, समझ में आ रहा है कुछ, इतना समझा रहा, तो उन्होंने कहा कि जो आप वेदांत बोल रहे हैं वो तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन जो आपकी व्याख्या है वो ऐसा है कि सूर्य को बादल ने ढक दिया, ये आपकी व्याख्या है। बड़ा गुस्सा है, मैं सोचो कि हम आपको इतना समझा रहे हैं और आपको आप कुछ बोल रहे हैं, हम आपको लास्ट में मुझे समझ में आया, अरे आपने जो बोला, जो ईश्वर के मंत्र बोले वो तो बड़े स्पष्ट है, लेकिन जो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी आपने ढक दिया सूर्य को। तो फिर उस समय जब उन्होंने वो आत्माराम श्लोक कहा तो कई तरह से उन्होंने 9 तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से आत्माराम श्लोक की अलग अलग व्याख्या की, मतलब हर व्याख्या को अलग, और महाप्रभु ने उन व्याख्याओं को छोड़कर अन्य कई और प्रकार से व्याख्या करके दिखा दी। तो उस समय की कृपा हुई और वो जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान। उस समय की कृपा, थैंक यू राधा जी। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया कि क्यों आप लोगों को इतना ज्ञान है और आप सोच रहे हैं कैसे व्यक्ति निराकार मान सकता है भगवान को, हो ही नहीं सकता, आप यही सोचते हो ना, क्या बोल के व्यक्ति क्यों निराकार मान रहे, भगवान कैसे हो सकते निराकार। लेकिन आप सोचो अगर आप उनकी जगह होते, आप आंदोलन में नहीं आए होते, सही मार्ग नहीं मिला होता, तो आज आप भी वही कर रहे होते। तो इसीलिए कृतज्ञ रहना चाहिए कि कितना स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद। हम लोग को लगता है भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे लोग, कि बेवकूफ लोग इतने सब उसमें पड़े हुए हैं। आज आपको लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर इतनी कृपा हो गई आचार्यों की, भगवान की, कि आपके लिए मार्ग पूरा स्पष्ट है, इसीलिए आपको लग रहा है। लेकिन जिनका स्पष्ट नहीं है मार्ग, जो कन्फ्यूज है, उनको पूछिए जाकर, जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई, जिन्होंने सही प्रामाणिक आंदोलन में नहीं आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, केवल कंफ्यूजन है जीवन में, सही उत्तर नहीं है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है, ज्ञान सही नहीं है, कहाँ जाना है वो सही नहीं है। हमारे लिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में, बहुत स्पष्ट है ज्ञान, कृष्ण कौन है, उनके पिता का क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, हमारे पास सब है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का सब नंद महाराज उनके पिता है, वो लोग उनका एड्रेस सारा पता है, कोई चिंता नहीं, हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, निराकार में जाके क्या होगा, कितने समय रहें, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे लिए, स्पष्ट चीज है, कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, हम उनकी भक्ति करके उनके धाम में जा रहे हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, कोई कंफ्यूजन है आपको। ये क्यों नहीं है, क्योंकि आचार्यों की कृपा और भगवान की कृपा हम पर, इसलिए आज हमको लगता है, हम भी जब शुरुआत में आए तो लगता था लोग क्यों भक्ति नहीं करते, इतने सारे इस्कॉन सेंटर खुले हुए, जाओ कहीं भी भक्ति करो, हम सुनते थे भक्ति करना, भक्ति में आना बड़ा दुर्लभ है, भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है, हम सोचते थे क्या दुर्लभ है, किसी भी केंद्र में चले जाओ, वहीं भी चले जाओ, कोई मना करता है, यहाँ पर समझिए कोई व्यक्ति आ जाए, यहाँ बोल रहे नहीं, एंट्री नहीं है, सबके लिए है, और आकर भक्ति करें, हम तो खुश होते कोई नए आते हैं, तो क्यों नहीं है, बड़ा कठिन है भगवान के पास आना, कृपा चाहिए।
ऐसे मानसिक तत्व ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष उनके दिव्य शरीर का तेदिव्य मान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, न ही वे जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेम में सेवा करते हैं।
तो यहाँ क्या क्या गुण दिए गए जब आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ आ गया। तो क्या गुण है, क्यों जान सकते हैं, जब देवता नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकते तो क्यों जान सकते। प्रभुपाद ने लिखा भक्त जो कृष्ण के हैं किस तरह जान सकते हैं, क्या लक्षण दिए जाने के, अनन्य भक्ति और उनकी शरण में जाना जिससे उनकी कृपा प्राप्त। तो इसीलिए अनन्य भक्ति से ही, जैसे अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सतत भगवान की सेवा में, उसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता। तो जब तक देवता शरण में नहीं आएंगे भगवान की नहीं जान पाएंगे, जिस दिन देवता भी शरण में आएंगे वो भी जान लेंगे। तो ये नहीं मानना चाहिए कि देवता कभी नहीं जान सकते, कोई भी जान सकता है भगवान को, कैसे उनकी शरण में आए और उनकी अनन्य भक्ति करे। तो जिस दिन देवता भी करेंगे वो भी जान जाएंगे, मनुष्य करते हो जान जाएंगे। तो इस प्रकार से जानने का मार्ग ठीक है। ये आप जानते हैं परमात्मा ब्रह्म का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार आगे बढ़िया भक्त। अब देवताओं का वर्णन आएगा।
भगवत गीता 7:23 में कहा गया है केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्र दीप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं।
आपकी भगवत गीता में मूर्ति पूजा बंद है, मूर्ति पूजा लिखा नहीं करना चाहिए, आपकी भगवत गीता में लिखा है। आप जो हिंदू है आपने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, तो लोग है ना जाते थे अच्छा भगवत गीता में लिखा कहाँ लिखा, 7:20 श्लोक में लिखा है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं करनी चाहिए मूर्ति पूजा, स्पष्ट लिखा है। क्योंकि उन्होंने श्लोक पढ़ा ही नहीं कभी, ना उन्होंने पढ़ा ना उनके अधिकारियों ने पढ़ा और ना जो सुनने वाले उन्होंने पढ़ा, केवल तालियां बजाई। भगवत गीता के 7:20 श्लोक में क्या कहा गया है वो कोट करते हैं, और वो ऐसे बोलते थे कि लोगों को लगता था कि बस इनसे पहले तो कोई है ही नहीं। भगवत गीता का 7:20 श्लोक ये कहता है, 8:14 श्लोक ये कहता है, उपनिषद में ये कहा गया। आप ज्ञानी व्यक्ति है इसको सब पता है, ज्ञानी नहीं है आप अज्ञानी हैं, तो वो जो बोल रहा है वो सही है नहीं आपको कैसे पता है ना। तो 7:20 में क्या लिखा गया, कामस्तस्य हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, वहां वर्णन है कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है काम के द्वारा वे लोग अन्य देवताओं की पूजा करते कृष्ण की नहीं करते, ये कहा गया। लेकिन वो ही कहते हैं कि देखो इसमें कहा गया आपकी बुद्धि खराब है इसलिए आप मूर्ति पूजा करते हो, आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी। ऐसे कई लोग भ्रम में डालते हैं। हम तो जब उनकी चीजें सुना करते थे तो हमें बड़ी हंसी आती थी क्योंकि हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर जान लिया कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। वो एक बार कह रहे थे उनके भाषण में, प्रवचन नहीं कहना चाहिए, भाषण में वो कह रहे थे कि भागवतम में आपके लिखा है मोहम्मद का अवतार, मोहम्मद आएंगे ये अवतार है, तो आप लोग उनको क्यों नहीं मानते हो जब आपके भागवतम में लिखा है। कहाँ भागवतम में, तो उन्होंने कोट किया भागवतम के इस कंध में ऐसे लिखा गया है। तो फिर कहा कि उनको कल्कि के रूप में कहा गया है, सुनने का हुआ कल्कि और मोहम्मद ये कहाँ कनेक्शन आ गया, कल्कि तो आए नहीं अभी तक और मोहम्मद तो आकर चले गए, और ये कहा गया था कि कल्कि को तो कल्कि तलवार लेकर लोगों को मारेंगे नहीं, उनकी स्थापना करने जितने भी असुर हैं कल्कि उनका वध करेंगे सफेद घोड़े पर सवार होकर, ये तो मोहम्मद को पत्थर मारे लोगों ने, उन्होंने कौन सी तलवार लेकर भागे राइट। तो ये जो चीजें हैं ये सारी गलत चीज है। धर्म हाँ, हम उस धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म प्रमाणिक हो सकता है, लेकिन ये जो गलत व्याख्या धर्म की है वो सही नहीं। मोहम्मद को कल्कि से जोड़ना, कल्कि लोग कहेंगे जीसस कल्कि है क्या है, ये सब अपने मन की बात है ठीक है। तो ये श्लोक आया था हमने इस बारे में कैसे आगे बढ़े।
चूंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर अस्थायी राहत प्राप्त कर सके जहाँ शाश्वत आनंद जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः ईशो परिषद यह उपदेश देती है कि हमें प्रत्यंत देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए जो सर्वाकर्षक है
और जो हम लोग अपना धाम वापस ले जाकर भौतिक आनंद से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं।
बहुत अच्छा, तो अब आप लोग मार्क करना शुरू कीजिए देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा गया है। भगवान और देवताओं में अंतर भेद इसको समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या एक भेद समझाया जो अभी हमने पढ़ा, क्षणिक और अस्थाई लाभ दे सकते हैं। क्यों क्षणिक और अस्थाई लाभ दे सकते हैं? क्योंकि वो खुद भी क्षणिक है। जो जितना है ब्रह्मा जी से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद मरने वाला हूँ, मैं कहाँ से वरदान दे दूंगी तुम्हें, अगर तुम्हें दे सकता तो मैं खुद ही ले लेता। तो खुद क्षणिक है, इसीलिए वो जो दे सकते हैं वो भी क्षणिक ही है और अस्थाई है। तो अब आप जैसे जैसे अंतर आते जाएंगे उसको माफ करते जाएंगे। हाँ जी,
बर्तन देवता,
हाँ परतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। मतलब जी देवता स्वतंत्र क्यों नहीं है? सारी शक्ति भगवान से आती है, और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि देवताओं के एक एक विभाग है, वो दूसरे विभाग में थोड़ी जा सकते हैं। अभी वायु है, उनको वायु का विभाग है, वो चाहे तो अग्नि नहीं जला सकते, अग्नि का अग्नि विभाग है। तो उनकी भी सीमाएं हैं, सीमित है, और वो भी सीमाएं अधीन है भगवान की शक्ति के। वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अगर पूर्ण स्वतंत्र होते तो जब असुर आक्रमण करते हैं तो भागते नहीं ब्रह्मा जी के पास और भगवान के पास, बचाइए बचाइए, स्वतंत्र है, अपने आप कर लो। बहुत अच्छा, तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, आगे बढ़े।
भगवत गीता 7.23 में यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा, बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में
तो ये देखिए कि हम लोग स्पेस में जाने की पहले से कामना, कोई उदाहरण है? यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ दिया गया कि चाहे स्पेसशिप से हो या योग शक्ति से या देवी देवताओं की पूजा से, वैसे कौन से आपको उदाहरण आते हैं कि लोगों ने स्पेस में जाने का प्रयास किया? रावण स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा था, ठीक है। हाँ, विश्वामित्र ने भेजने का प्रयास किया, किसको? दुष्यंत को, एक राजा था, तो उसको उसने उनके अपने यज्ञ के बल पर मैं भेज दूंगा, यज्ञ करके उनको भेजा, इंद्र ने वहां से वापस भेजा, दोनों में झगड़ा चल रहा और वो बीच में अटक गए, इसलिए उनको दुष्यंत को कहा गया। और किसी ने ऐसे प्रयास किया स्वर्ग जाने या ऊंचे लोगों में? प्रभुपाद कई जगह पर नारद मुनि के बारे में लिखते हैं, स्पेस मैन। तो नारद मुनि जहाँ भी चाहिए जा सकते हैं ना, कहीं उनको कोई रोक टोक है, बिना रोक टोक के पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वो उनका बल क्या है, क्या उन्होंने स्पेसशिप बनाया, योग शक्ति है उनके अंदर, ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान के बाद। मतलब सारी जो चीजें हम इन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं वो अपने आप हाथ को मिल जाती है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इन चीजों से पहले भी और आज भी वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग गए थे चंद्रमा पर, गए या नहीं गए, लोग तो कहा नहीं गए तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन चलिए कुछ लोग गए, क्या गए वहां पर जाकर, क्या लेकर आए? पत्थर, पृथ्वी पर कमी है पत्थरों की, वहां से लाने की क्या, इतना मेहनत खर्चा करके पत्थर लेकर आने की क्या जरूरत थी वहां से? तो इसलिए ये जो, और वो गए कि नहीं गए क्या पता, अगर मान लीजिए किसी और प्लैनेट पे गए भी, उनको क्या पता वो चंद्रमा है। जैसे हम लोग यहाँ से चले जाए कहीं से उड़ के और किसी रेगिस्तान में उतरे और कहें कि ये थार मरुस्थल है, तो हमें क्या पता वो थार मरुस्थल है, ये क्या है, कहाँ गए, किसको पता है? तो इसीलिए ये जो चीजें हैं कि प्रयास कर रहे हैं सफल नहीं हो सकता। आगे बढ़िए,
वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीन साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो।
तो देव की पूजा जब करते हैं तो यान्ति देवव्रता देवान, जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके प्लैनेट में जा सकते हैं।
इस प्रकार मनुष्य चंद्र लोक सूर्य लोक या ब्रह्म लोक तक भी जो इस प्रमाण में सबसे उच्च लोक है पहुंच सकता है, किंतु इस भौतिक प्रमाण में सारे ग्रह क्षण भंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता है, जैसा कि भगवद गीता 8.16 में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है, जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर जन्मतम लोक तक सारे के सारे लोग दुख के समान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता।
ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाइए, पुनरावृत्ति वापस आना पड़ता है। देखिए माम वेत्ते तु माम तेह, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म न वेत्यते। तो शाश्वतता का वर्णन है कि यहाँ पर जो भी देवी देवता देते हैं वो शाश्वत चीजें नहीं है। भगवान आप उनके धाम में भी चले उनका धाम शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान के धाम जाना ही शाश्वतता है। आगे बढ़े।
श्री शुक्रिषद करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है।
कैसे रह जाता है? देवताओं का लोग प्राप्त कर लिए, फिर ब्रह्मांड के गहन का अंधकार में कैसे रहे?
और उसका आधा भाग जल से भरा है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य में चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर,
हाँ, तो यहाँ सभी समस्या है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका नारियल बनाया गया है, तो क्या बताया जा रहा है कि आदमी व्यक्ति अगर यहाँ से वहां भी चला गया, वहां से वहां भी चला गया, है तो अंधकार में। क्यों अंधकार में है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड ढका हुआ है, आवरण है ब्रह्मांड का। नारियल जैसे होता है, नारियल बाहर से आपको दिखता नहीं, अंदर पानी होता है, उसके अंदर आधा पानी भरा होता है, फिर बाकी खाने के लिए रहता है। तो ये जो ब्रह्मांड है ऐसे ही है, और इसके आठ आवरण है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, महातत्व, अहंकार इत्यादि, ऐसे कई आवरण है पृथ्वी के ऊपर जल का। तो यहाँ पर देख रहे हो लिखा गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महातत्व, अहंकार, ऐसे, और अंतिम है प्रकृति। तो ऐसे ये जो अहंकार है, इनका वर्णन किसमें आया है? बहुत सुंदर वर्णन इनका बृहद भागवतामृत में आता है। अगर आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो जो गोप कुमार इस ब्रह्मांड के परे जाने का प्रयास करते हैं तो उनको इन सारे आवरणों के पार जाना पड़ता है, और एक एक आवरण अन्य आवरण से बहुत बड़ा, जैसे जो सबसे पहले है यहाँ देख रहे ना कि छोटा है, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, ऐसे ये आवरण है, और बड़े आकर्षक है ये आवरण। ऐसा नहीं मानिए कि आप जाएंगे तो कुछ नहीं, बड़े आकर्षक है। तो जीव जब बाहर जाने का ब्रह्मांड से प्रयास कर रहा है, जैसे वहां का वर्णन किया गया है, तो बड़ी आकर्षक चीजें होती है वहां पर, तो जीव का आकर्षण हो सकता है। इसीलिए भक्ति में हमें केवल कृष्ण, अनन्य भक्ति कृष्ण से आसक्ति सिखलाई जाती है, कि जिस दिन हमें बाहर जाना हो तो हमारा आकर्षण यहाँ आना हो जाए। जैसे मुझे हमने सुनाई थी ना, नारद मुनि ले जा रहे हैं सबको ब्रह्मांड के बाहर, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, नारद मुनि ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, बहुत दुखी है कलयुग के लोग, हम आप एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस आज के दिन जो भी आएगा उसको फ्री एंट्री, प्रवेश मिलेगा। तो उस समय सब दे दिया उन्होंने, नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता से नीचे आए, घोषणा कर दी कि जो भी आ जाएंगे सबको वैकुंठ में प्रवेश। सब लोग चल दिए, लाइन लग गई बड़ी थी, और नारद मुनि नाच के गाते ऊपर पहुंच गए, भगवान के सामने पहुंचे, नाच रहे। भगवान ने पूछा, क्या हुआ नारद, क्यों इतने प्रसन्न हो? बोले, इतने सारे लोगों का उद्धार हो गया, मैं प्रसन्न नहीं होगा? इतने सारे लोग वैकुंठ में आ गए, कितने सारे? बहुत सारे। कितने सारे? इतने सारे, देखा तो एक भी नहीं थी। नारद मुनि अकेले नाच रहे, नारद मुनि, अरे कहां में देखा, कोई स्वर्ग में लटकते हैं, कोई थोड़ा सा और ऊपर हुए, महामार लोग हुए, जन लोग हुए, पहुंचे ही नहीं। नारद मुनि अकेले कीर्तन करते करते पहुंचे। तो अगर हमारा आकर्षण, प्रभुपाद कहते थे कि अगर गुलाब जामुन से भी आकर्षण है तो वापस आना पड़ेगा इस जगह। अगर हमारी आसक्ति विहाराकाश में नहीं मिलती गुलाब जामुन, गुरु जी बाकी सब चीज छूट जाती है, गुलाब जामुन देखते ही। अगर आप उसको प्रसाद के लिए ले रहे हो तो क्यों केवल गुलाब जामुन? करेला भी भगवान का प्रसाद है। मैं ये हमारे ये हमने कल बोलते भक्ति में हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का प्रसाद है, लेकिन क्या आप उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हो, कृष्ण के रूप में, कि गुलाब जामुन के रूप में, और उसको नाम दे दिया प्रसाद का? तो हमें करेला अच्छा नहीं लगता, दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती, उससे आसक्ति नहीं है। गुलाब जामुन भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद तो बाकी सब कुछ भी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इतनी जरा से, मतलब जरा से देश मात्र आसक्ति किसी चीज से नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें क्या उत्पन्न करना है, कृष्ण को पाना कोई सरल बात नहीं है। शुरुआत में आपको एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया, चैंट एंड बी हैप्पी, हाँ केवल जब करो कृष्ण प्राप्ति होगी, वैसे वो सच है, झूठ नहीं कहा गया, वो सच है, लेकिन हमारा वो जब ऐसा नहीं है कि जैसे कृष्ण प्राप्ति हो सके। तो आसक्ति को निकालना जरूरी। तो गोपी कुमार जब जा रहे थे तो दिखाएगा कि कितना आकर्षण उनको खींचा जा रहा था, लेकिन गोपी कुमार का ध्यान भगवान में था, इसीलिए पार कर सके। तो ऐसे ये ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे अंधकार है, आप ऊपर भी चले जाओ तो वो तो अंधकार नहीं। ठीक है, आगे बढ़े।
ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ब्रह्मों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा शहर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहाँ अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित है जिस तरह सूर्य अपनी अविजय कक्षा में स्थित रहता है।
तो यहाँ और क्या क्या हो गया है कि जिस तरह से भगवान के धाम को शाश्वत बताया गया, बाकी सब जो है तो ब्रह्मांड के अंदर अंधकार है। आगे बढ़िए।
जीवन की समस्या मात्र चंद्रमा पर या इनके ऊपर या नीचे किसी दूसरे ग्रह पर जाने की या हर जाने जाने से हल होने वाली नहीं है। अंतरंग ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकार में भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिमय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
तो अगर हम इस जगत में ऊंचे नीचे कहीं चले भी जाते हैं, कोई लाभ है, हमारी समस्याएं हल होंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सही समस्याएं हल होंगी नहीं होंगी, आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए केवल इस जगत में ऊपर नीचे घूमने से कोई लाभ नहीं है, इस जगत के बाहर जाना है। जेल में एक कोठरी से दूसरी कोठरी में चले गए जहाँ पर लाइट ज्यादा है, प्रकाश आ रहा है, या वहां पर आपको कुछ खाने मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है, उद्देश्य जेल के बाहर जाना है। राइट, ठीक है, आगे।
ऐसे अनेक छंद पूजक है जो केवल नाम तथा वश कमाने के उद्देश्य से धर्म ध्वजो बनते हैं। ऐसे छत्मा धर्म ध्वजी इस ब्रह्मांड के निकालकर वैकुंठ रूप में नहीं जा नहीं जाना चाहते।
ये आप अभी धर्म ध्वजियों का लक्षण को मार्क कीजिए कि धर्म ध्वजी क्या क्या कौन है या क्या क्या वे करते हैं।
वे ईश्वर पूजक के छप वेश में इसलिए भौतिक जगत में अपने स्थिति पूर्वक बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निवेशवादी लोग ऐसे छप धर्म ध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उद्देश्य देकर उन्हें गहनता अंतर में धके देते हैं।
तो अभी तक क्या यहाँ पर आए धर्म ध्वजियों के कितने लक्षण आए कौन बताएंगे कौन कौन से? भौतिक जगत में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं और नाम और यश के लिए केवल भक्ति करते हैं और जाना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते। ठीक है, आगे बढ़िए।
नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आस्तिक को सीधे सीधे नकारता है और निर्देशवादी परमेश्वर की निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमें ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य है और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्होंने किस तरह निराकार का कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है जो परम सत्य के अपूर्ण धारणा में उत्पन्न होती है।
यह कहा गया है कि जो लोग नास्तिक हैं उनको माया जो निराकारवादी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं नास्तिकों को निराकारवादी सहयोग? फिर से वो लाइन पढ़िए, नास्तिक सीधे भगवान के अस्तित्व को नकार।
नास्तिक तथा
निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म
नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म ग्रंथियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनता मंत्रकार में नकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है।
हाँ, तो नास्तिक कहते हैं भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, भगवान को नहीं मानते। तो जो निराकारवादी हैं भगवान को मानते हैं कहते हैं, लेकिन जब भगवान के रूप को नहीं मानते तो क्या कर रहे हैं? जो नास्तिक हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे तो कह रहे सही भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, वैसे भी तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तो एक सहयोग देने की बात हो रही है, मतलब दूसरी दृष्टि में निराकारवादी भी एक तरह से नास्तिक ही हैं क्योंकि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आगे बढ़िए।
प्रज्ञानी छद्म धर्म ध्वजि एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं,
ये सब आप कर रहे हैं ना, आप लोग धर्म ध्वजियों के विलक्षण चल रहे हैं। हाँ जी,
ब्राह्मण के अंधकार में भाग में प्रवेश करते हैं क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्देशवादी सामान्य मूर्खों के मध्य मान्य मूर्खों के मध्य अपने ईश्वर अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं क्योंकि वे वैदिक वाक में का कोई ज्ञान नहीं होता क्योंकि उन्हें वैदिक वाक में का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्देशवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्कृतियां हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये शास्त्र ये भी कहते हैं समानता ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवत गीता 7:23 में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते क्योंकि यह सारा भौतिक प्रमाण की ब्रह्मांडीय स्थाई नहीं। अतः इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए।
हाँ, तो वास्तविक और स्थायी जीवन कैसे प्राप्त करना है, हमें समझ में आया देवी देवताओं की इत्यादि ये सब करते रहेंगे तो स्थायी नहीं है, तो क्या मार्ग है इसको आगे तौर पर बता रहे हैं। बढ़िया,
जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अपनी चेतना के अनुसार ही इन लोगों को पार कर लेते हैं या वो आते हैं ले जाते हैं, कैसे इसका मतलब समझ नहीं आया कि अपनी किस चेतना से जन लोग तप लोग महालोक शिव लोग या कौन से लोग में हम कैसे जाते हैं।
थोड़ा टाइम रुकिए, जब जाएंगे तो पता चल जाएगा।
जाने की व्यवस्था कैसे कर
प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग एक क्षण में आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस दिन हमारी चेतना शुद्ध होती है देह छोड़कर एक क्षण हम आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको कई तरह से समझाया गया है कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये जो भौतिक जगत है ये ऐसे बताया कि हमने आंख बंद की और आंख खोली, इतना समय में हमारा भौतिक अस्तित्व रहा, आंख बंद भी खोली, तो जैसे आंख खोली हम आध्यात्मिक जगत में फिर से हैं। आंख खुलने का अर्थ है ज्ञान हो जाना, चेतना शुद्ध हो जाना। तो जब चेतना शुद्ध हो गई व्यक्ति अपने आप आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाता। अब कैसे जाते हैं उसके अलग अलग मार्ग हैं। जैसे हम लोग भागवत शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, जब ध्रुव महाराज गए प्रेम लेने के लिए आए, यमुना जामिल को लेने के लिए आए और प्रेम में बिठा कर लेकर चले गए, तो ये और भी कई ऐसे उदाहरण भागवत में दिए गए हैं कि किस तरह व्यक्ति चला जाता है। तो जाने का जो अभी विमान भी आएगा तो उस समय आपको ये आकर्षण नहीं होंगे, क्योंकि विमान तभी आएगा जब आप पूर्ण आकर्षण से मुक्त है। तब तक विमान नहीं आएगा, तब तक तो आपको इधर ही उधर घुमाया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी। युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो चलते गए चलते गए, एक एक उनके भाई, पहले उनकी पत्नी फिर भाई, सब गिरते गए, द्रौपदी गिरी, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर वो अकेले चलते गए। उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा था, तो प्लेन आया उनको लेने के लिए, इंद्र ने भेजा कि आपको स्वर्ग में बुला रहे हैं चलिए। तो उन्होंने कहा चलो, चढ़ने लगे, बोले कुत्ते को भी पहले चढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि कुत्ता वहाँ नहीं जा सकता, फिर कुत्ता कैसे स्वर्ग में जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, इसने इतना साथ दिया है मेरा, मैं कैसे छोड़ के चले जाऊँ, पहली परीक्षा थी। तो वो एक्चुअली कुत्ता नहीं था। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो स्वर्ग में पहुँचे तो वहाँ पर उनको ले जाया गया। उन्होंने देखा स्वर्ग में प्रवेश करते देखा कर्ण बैठे, दुर्योधन बैठे, सब आनंद ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने इन लोग को स्वर्ग में ले गया, ठीक है चलो, वो भगवान की कुछ कृपा होगी, सब स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सारे दुशासन ये वो सब अपने भाई देख ले रहे कहाँ गए। तो उन्होंने पूछा कि मेरे भाई कहाँ पर है, सभी ये लोग तो है ठीक है बाकी का चलो दिखाते हैं। तो लेके गए उनको जगह, बड़े कम दीजिए कहाँ पर हुआ रही है, और उनको आवाजें आने लगी भीम का, भीम की, अर्जुन की, बचाइए उनको बचाइए, बड़े कष्ट में है, वो नरक में है और ये लोग स्वर्ग में है। रिश्ते कहा बड़े आश्चर्य इन लोगों को स्वर्ग मिल गया। तो फिर उसको लेके गए तो उन्होंने कहा चलिए अब आपके लिए तो स्वर्ग है, ये तो आपके भाइयों के लिए है लेकिन आपके लिए स्वर्ग है। युधिष्ठिर ने मना कर उनको, मैं नहीं जाऊँगा स्वर्ग, मेरे भाई सब यहाँ है तो मैं भी यहीं आऊँगा, ये दूसरी परीक्षा थी। दरअसल वो स्वर्ग नरक में नहीं थे, ये परीक्षा थी। तो ऐसे जब तक हम लोग पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं हो जाएंगे प्लेन आएगा नहीं हमारे लिए। और ये मत सोचेंगे कि प्लेन आया हम जा रहे हैं, जाते जाते कहीं आसक्त नहीं हो गए प्लेन से उधर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि प्लेन तभी आएगा जब आप पूर्ण रूप से जब जान लेंगे भगवान, तभी अपने दूतों को भेजेंगे, विष्णु दूत तभी आएंगे। अजामिल के पास आए विष्णु दूत, उसके बाद जाकर अजामिल ने तपस्या की हरिद्वार में कई वर्ष, फिर वापस वही विष्णु दूत आए और फिर उनको लेकर गए। तो जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे, ठीक है।
करुण पुराण सुनते हैं तो वहाँ वर्णन आता है कि नरक का वर्णन जब आता है कि स्वात्मा कितना लंबा समय लगता है, किस प्रकार करना पड़ता है, तो वो माइंड में कंसेप्शन बोल के दिमाग में रहता है,
में बहुत समय लगता हजारों वर्ष तक फेस्टिव हो गया ये प्रभुपाद में एक क्षण में पहुंच जाओगे आप चिंता नहीं करना नरक का अल्टीमेट डेस्टिनेशन इच्छा ही क्यों करना इस मंदिर में तारे गरुड़ पुराण में एक लगता है कि नरक के अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक एक साल लगता है मतलब आप एक साल तक आप कष्ट भोगते रहते हो एक एक जगह पर राइट फिर जाके अल्टीमेटली फाइनल कष्ट शायद सारे शरीर को ऊपर से नीचे तक काटते हैं क्या होता पता नहीं किसी को अनुभव है कोई बता सकते हैं हम तो भागवत के अनुसार बता सकते जारी है कि शरीर को वहां वर्णन है आंखों को निकाल लिया जाकर व्यक्ति देख रहा है आंखें जाती है आंखों को निकाल लिया तो देखेगा कहां लेकिन वह वर्णन है क्योंकि शरीर ऐसा ही यातना योनि दी जाती है नरक में जाने पर मतलब आपके शरीर में आपकी आत्मा जो निकली है शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ तो उस पर एक यातना योनि दी जाती है वंडरफुल शरीर है यातना योनि इतना ब्यूटीफुल शरीर अगर यहाँ पर होता हम लोग तो बड़े मजे में रहते हैं यातना शरीर की क्या महत्व है कि उसमें जब आपके शरीर को काटा जाता है आपको दर्द वही होता है जो इस शरीर को काटने से होता है लेकिन आप मरते नहीं इतना बढ़िया शरीर है आपके अंगों को काटा जाता है शरीर काट कर आपकी किडनी निकाल रहे हैं आपका पैनक्रियस निकाल रहे सब निकल रहा है आप देख रहे हो उल्टा हुआ जा रहा है लेकिन आप मरते नहीं कितना बढ़िया शरीर है सारा शरीर तो इसीलिए टॉम एंड जेरी का क्या
है कार्टून शो है बच्चों का जिसमें टॉम को कहीं से भी फेंक देते हैं उसके ऊपर कोई ट्रक चल जाता है वो पूरा फ्लैट हो जाता है लेकिन मरता नहीं
अच्छा हाँ राइट राइट देखा था बच्चों सो ऐसे हाँ तो ये शरीर है टॉम एंड जेरी माता जी कितना बढ़िया देखिए हमारी चेतना कहाँ कहाँ रह गई सही है ना हमारी चेतना नरक में चली गई हमारी इतनी निम्न चेतना हम तो नरक का सोच रहे हैं माता जी एकदम सही चेतना में है नरक में मत जाइए यहाँ पर भी दिखाई देता है तो ऐसा वो शरीर है नरक तो वहां काफी समय रहना पड़ता था इसलिए प्रभु जी कह रहे थे शायद इसीलिए सोच रहे कि वहां जाने में कितना समय एक क्षण प्रभुपाद कोई बस आपकी आंखें बंद हुई शरीर से आत्मा निकली आप आध्यात्मिक जगत में कृष्ण इंतजार कर रहे हैं जैसे आगे पढ़िए
भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त
मुझे
सुनता है सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है
तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग भक्ति है इसको नोट करना चाहिए जैसे कभी कोई मेन पॉइंट होता है ना तो उसमें माय लॉर्ड प्लीज नोट द पॉइंट ऐसे कहते हैं ना कोर्ट में प्लीज नोट द पॉइंट एक ही मार्ग है यस
क्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है इन चंद धर्म द्रव्यों में न तो ज्ञान होता है न भौतिक मामलों में विरक्ति क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंध कर धार्मिक सिद्धांतों के वश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं
आप नोट कर रहे हैं ना अभी तक सब कंप्लीट नहीं हुआ धर्म भाजी का
इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते वे वैदिक आदेश आचार्य उपासना आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्त अर्थात भगवान का यह सर्वत्रकृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है कि भी अनदेखी करते हैं वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते
आखिरी पैराग्राफ उसको भी पढ़िए तो ये थे।
ऐसे ध्रुव मानव समाज के सबसे घातक तत्व है, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार दुमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं।
इन लोगों को सबसे घातक मान रहे प्रभुपाद सारे, इसलिए प्रभुपाद एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे उनके लिए, हम जब पहले आए थे इस कॉन में, हमने इस शब्द सुना, आपको बड़ा बुरा लगा, इतने बड़े साधु हैं गाली तो दे रहे है ना, साधु है ठीक है, जो भी उनको तो सहिष्णुता होना चाहिए, ये अपशब्द निकालना अच्छी बात नहीं है, गालियां देना ये सब ठीक है, कुछ और कह देते हैं, लेकिन लेकिन हमें ये भी आया कि हो नहीं सकता, प्रभुपाद के मुख से निकल रहा है तो कुछ तो उसका होगा, तो हमने डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा रास्कल का, क्योंकि हम लोग एक ही पता था रास्कल मतलब गाली है, यही मानते थे हम लोग, लेकिन जब रास्कल शब्द का अर्थ देखा डिक्शनरी में तो उसमें लिखा हुआ है वन हु मिसगाइड्स। अगर आप लोग कभी देखना चाहें तो डिक्शनरी में देखे जाके रास्कल शब्द का एक अर्थ लिया है वन हु मिसगाइड्स, तब हमें पता चला कि प्रभुपाद ने एकदम परफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद कितने बार कहते थे दीस रास्कल्स दे आर डूइंग दिस, तो शुरुआत में अच्छा लगा ठीक है प्रभुपाद, हम कहते हैं प्रभुपाद अच्छे हैं साधु हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन रास्कल शब्द परफेक्ट है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो कोई गाली नहीं है, उसका मतलब है मान लू मिसगाइड, वो व्यक्ति जो भ्रमित करता है, और यही लोगों के लिए प्रभुपाद ने उसको इस्तेमाल किया। तो देखिए एक शुद्ध भक्त अगर कोई भौतिक शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होती है, कितना ध्यान से वो कर रहा है। यस
किंतु वे परमेश्वर के नियम से बच नहीं बच सकते, जिन्होंने भगवद गीता 16:19 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में सभी असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। इसमें पुष्टि करती है कि ये चंद्र धर्म ध्वज केवल अपने इंद्र कृत्य के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे।
जब गुरु होने का व्यापार पूरा हो जाएगा, बिजनेस, गुरु बिजनेस, लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है, गुरु बनना आजकल के लिए बड़ा बढ़िया बिजनेस है, प्रसिद्धि मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, जो सुविधा चाहिए मिल जाती है, गुरु बनते भागते हो, हम लोग हर क्षेत्र में गुरु बने, कॉरपोरेट गुरु, ये गुरु वो गुरु, योगा गुरु, योगा तो आजकल फैशन है, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको और बढ़ा दिया, तो योगा शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना, योग युज धातु से आता है, युज धातु मतलब युज यानी जुड़ना, भगवान से जुड़ना, तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, योग का अर्थ ये नहीं है खाली आप हाथ पांव पर करते रहो उल्टे लुटे हो जाओ, ये खाली योगा नहीं, ये तो एक भाग है, आसन योगा का एक भाग है, वो पूर्ण योगा नहीं है, लेकिन उसी को पूर्ण योगा बना दिया, जैसे ही योगा मन में आता है लोग एक्सरसाइज, लेकिन योग क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग है, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना, इसको योग कहा जाता है। तो इसलिए जो बिजनेस चल रहा है लोगों का कि उसमें सब कुछ मिल जाता है, और लेकिन उनके अनुयायियों को क्या मिलता है, जो उनका पालन कर रहे हैं आंख बंद करके कि हाँ हम कुछ अच्छी प्रगति करेंगे भगवान, उनको क्या मिलता है, जब गुरु जा रहा है गड्ढे में बस, तो कहते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति का पालन करोगे वो भी अंधा है, और आप उसको अंधा तो अंधे के पीछे आप अंधे चलते जाओगे तो वो भी गड्ढे में गिरेगा, आपको भी गड्ढे में गिरेगा, बस यही हो रहा है। इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए श्री प्रभुपाद का कि बचा लिया ऐसे नहीं, तो आज हम लोग भी मान लीजिए हमारे मन में भी कभी आता है हमें भक्ति करनी, हम भी किसी ऐसे अंधे व्यक्ति के पीछे होते और उन्हीं को मानते जय जय यही सही है, अभी क्या होता जय जय करते हुए सब गड्ढे में गिरते हम लोग भी पीछे पीछे, जैसे बचपन में हमने कहानी सुनी थी पाइप पाइप पर और फैमिली सुनी आप लोगों ने, बांसुरी वाला, बांसुरी वाले की, तो क्या था शहर में बड़े चूहे हो गए थे, उसको बुलाया कोई उपाय नहीं था, तो एक बांसुरी वाले ने आके कहा गवर्नर से कि ठीक है मैं कर दूंगा लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ठीक है, उसको लगा कि बड़ी मेहनत करेगा आगे करेगा तो दे देंगे। तो उसने क्या किया, बांसुरी बजाई और वो ले गया पाइप पाइप पर उठाने। तो जब बांसुरी बजाई तो सारे चूहे पीछे 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 वो गया समुद्र में, सब धार समाप्त। तो सब उसके पीछे पीछे गए, बांसुरी में चले गए। इतना अच्छा वापस जाके पैसा मांगा, बोले क्या किया तुमने, मेरी बांसुरी बजाई इतना पैसा क्यों चाहिए, पैसा नहीं दिया। उसने कहा अच्छा सबके बांसुरी बजाई, सारे बच्चे पीछे पीछे चल रही है, उनको लेकर जाके बंद कर दिया गुफा में। तो उस समय तो हमको समझ नहीं आया, लेकिन अभी हम समझ रहे थे कि बांसुरी क्यों कहा गया। हाँ कई बार पूरा फैम है, क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे जितने भी चूहे हैं, मतलब जो भौतिक अनर्थ है, अगर हम उनकी बांसुरी के प्रति आकर्षित हों तो वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी आत्माएं हैं, अर्थात माता पिता के लिए बच्चे उनकी आत्माएं थी, तो फिर वो आत्मा की बड़ी आराम से जो भौतिक अनर्थ निकल गए तो आत्मा वो पीछे पीछे भगवान के बांसुरी में चली जाती है। तो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित होना। ठीक है, तो ये जो लोग जा रहे करने में तो वो भी उनके पीछे जाएंगे, तो इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, अभी 13वां मंत्र पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा भेद है, काफी प्राय है जो वेद को अपनी भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म ध्वजी है जो संसार में धर्म ध्वजी बने हुए हैं कि हम सब हैं और उन लोगों को बदलता है। वेदवाद रहता है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरों को ज्ञान डाले, वो खुद ही ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों तरह के। ये जो विशेषता धर्म ध्वजियों का वर्णन है जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों के भी दूसरों को ये कर रहे हैं गलत करते हैं, खुद भी गलत करते हैं दूसरों को भी ले जाते हैं। तो धर्म ध्वजी मतलब जिन्होंने धर्म के ध्वज को धारण कर रखा, हम धर्म गुरु हैं, हम ये हैं क्या, तो थोड़ा बहुत अंतर उसमें। अन्य देवा संभवा अन्य दाहुर संभवा इति शुश्रुमधीराणा चक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो पिछले श्लोक में कहा गया कि दोनों प्रकार के लोग नरक में जाएंगे, ये हमने सुना पिछले मंत्र में, दोनों प्रकार के लोग हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अलग अलग उनको लाभ मिलेगा, अलग अलग फल मिलेगा। जैसे एक तरह का फल मिलता है और दूसरी तरह का फल मिलता है। पहले कहा गया दोनों जाएंगे नरक में, और यहाँ कहा गया कि वो लोग जो भगवान या परमेश्वर की पूजा करते हैं उनको अलग फल मिलता है, और जो ऐसे दो तरह के लोग हैं उनको अलग फल मिलता है। तो क्यों अलग अलग फल मिलता है, कब होता है अलग अलग फल, जब ये समझ किसी धीर पुरुष के द्वारा दी जाती है तब हम भगवान के प्राप्त कर सकते। धीर पुरुष का वर्णन यहाँ पर हुआ है, पहले भी हम लोग शिष्यों में धीरा नाम वहाँ धीर पुरुष का वर्णन हो चुका है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी, वैसे तात्पर्य हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रचारकों के लिए, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्र, अब तक हम लोग परम सत्य भगवान से बात कर रहे थे, अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद वैदिक साहित्य से ये स्थापित कर रहे हैं बहुत सारे कोट्स दे देकर कि कृष्ण ही परम सत्य है। हम लोग केवल उसको पढ़ेंगे, आप लोग माफ कीजिए, आपके लिए बहुत आगे प्रचार के लिए बड़ा मदद करेगा। कोई कहेंगे कैसे, कहाँ दिया गया शास्त्रों में कृष्ण है, प्रभुपाद ने शास्त्रों से कोट दिया है। तात्पर्य पढ़िए माइक को बंद मत किया कीजिए, ऐसे ही पास किया कीजिए।
इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रमाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से कभी भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ना हो। भगवत गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वह पितर लोग को प्राप्त करते हैं। वह निपट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुँचते हैं।
जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे ही हमें भगवान दिखते हैं या वैसे लाभ मिलता है। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, इत्थं सदा ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां वरदैव तेन मायाश्रितानां नरदारकेन साधु विजुः कृतपुण्य पुञ्जः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें कहा गया इत्थं सदा ब्रह्म सुखानुभूत्य, जिनको ब्रह्म सुख का कामना है, ब्रह्म सुखानुभूत्या जिनको ब्रह्म सुख की कामना है तो उनके लिए भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। इत्थं सदा ब्रह्म सुखानुभूत्या मायाश्रितानां नरदारकेन, जिन्होंने माया का आश्रय लिया हुआ है उनके लिए साधारण नर है, वो साधारण मनुष्य है नरदारकेन, लेकिन दास्यं गतानां परदैव तेन, जो दास बने हैं भगवान के, जिन्होंने दासत्व स्वीकार किया है उनके लिए ऊपर दैव देना परम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ इसी बात को कहा गया कि जो जिसकी इच्छा कर रहे हैं, जो पितृ लोक जाना चाह रहे हैं, तो हमारी इच्छा पर आधारित है कृष्ण की प्राप्ति। अगर हम ब्रह्म की इच्छा कर रहे हैं भगवान ब्रह्म तक पहुंचा देंगे, माया में पड़े हुए हैं तो हमें साधारण व्यक्ति लगेंगे और यही होता है। कोई व्यक्ति सोचते हैं कि ठीक है कृष्ण उस समय एक महान व्यक्ति थे, एक महान व्यक्तित्व था उनका, भगवान नहीं मानते। कई धर्मों में भी तथाकथित धर्मों में भी एक विशेष धर्म में कहा जाता है कि भगवान इस समय नरक में हैं कृष्ण, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध कराया, इतने लोगों को मारा, तो वो नरक में है, नरक में कुछ समय भोग लेंगे तब वो आगे चलकर हमारे कुछ गुरुओं में से एक गुरु बनेंगे। तो भगवान नरक में है, जिसने बनाया नरक वो नरक में है। तो ये मतलब भगवान को प्रकृति के नियमों के अधीन होना। ठीक है, आगे बढ़े।
श्री इष्टुप निषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुँचेंगे, और यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम भी संदेह उनके लोगों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपनी योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक जोर जोर से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम तय भी कर सकते हैं।
मनहूस ग्रह में रहना चाहते हैं तो मनहूस क्यों कहा गया इसको? इतना अच्छा ग्रह है, कितनी सारी चीजें हैं, मनहूस क्यों हो गए? बुढ़े होना नहीं चाहते, बुढ़ापा आता है, और जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि कितना अच्छा था जानते थे, और जब जगह बोलते तब ये सोचते नहीं।
कितना अच्छा
घर बार होता है छोड़ के जाना पड़ता है, आप नहीं जाओ तो, नहीं चाहो तो भी जबरदस्ती आपको फेंक दिया जाता है बाहर, अल्टीमेटम भी नहीं दिया जाता, राइट? ये बात तो है। एक वकील एक बार ऊपर पहुंचे चित्रगुप्त के पास यमराज के दरबार में, तो वकील थे तो उन्होंने कहा आप मुझे लेके कैसे आए, कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, बिना नोटिस के लिए आप कैसे होगा? तो यमराज ने चित्रगुप्त को देखा मैं नोटिस के लिए भेजा, बोले इतने नोटिस भेजे इसने फाड़ कर फेंक दिए, कि मैं एक नोटिस नहीं भेजा, बोले भेजे सबसे पहले बाल सफेद किए हल्के से, उसने ढाई लगा लिए, पहला नोटिस था बाल भरे होने लग गए ढाई लगा ली, दूसरा अपनी आंखें लीक कर दी इसने कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिया, दूसरा दांत तोड़ दिए सारे इसके, वो भी उसने वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ डेंटिस्ट के पास जाके दांत लगवा लिए, इतने नोटिस तो भेजे इसको, वो सुने नहीं तो क्या कर सकते हैं, भगवान देते हैं नोटिस, ऐसा नहीं है हम लोग नोटिस को देखते नहीं है, बुढ़ापा आ रहा है वो फेस लिफ्टिंग करा लो, बुढ़ा नहीं होना, सारे नोटिस मिल रहे हैं लेकिन हम लोग देख नहीं रहे है ना, तो इसीलिए ये जगत मनहूस। वैसे भी देखिए हम शास्त्र पढ़ते जो मनुष्य जीवन के बारे में बार सोच रहे थे कि इतनी जगह पर कहा गया कि जब भी देवताओं को या अन्य लोगों को शाप दिया जाता है बोलते जाओ पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ, कितना शापित जीवन है मनुष्य ना, जाओ पृथ्वी पर जिसको भी देखो जाओ उन्होंने को शाप मिल गया पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ। यहाँ पर मनहूस जगत बहुत अच्छा शब्द आगे बढ़े तो
प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंतर्योद्धा एक लक्ष्य पर पहुंचेगा।
ये गलत सिद्धांत है। ब्रह्म पुराण का एक श्लोक है जिसको वो लोग कोट करते हैं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरा सर्वदेवो नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ये कहते हैं इस श्लोक को कोट करके देखो इसमें कहा गया है आप किसी की भी पूजा करो एक ही बात है, लेकिन ये उसकी गलत व्याख्या है। इतना सुंदर ये श्लोक है, सबसे पहले श्लोक में सर्वदेव और केशव दोनों को अलग कर दिया गया है, सारे देव एक तरफ कृष्ण एक तरफ। दूसरा उसमें क्या कहा गया है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरा, बाबी पड़ता है आकाश से बूंद आती है और वो सागर में जाकर मिल जाती है। तो सर्वदेव नमस्कार है केशव प्रति गच्छति, मतलब आप चाहे किसी की भी पूजा कर लीजिए अंत में कृष्ण के पास आना ही पड़ता है, ये उस श्लोक का अर्थ है। तो पहले पूजा कर लो कृष्ण की, अंत में क्यों जाना है, इसको यहाँ लिखा गया। हाँ जी आगे बढ़िए।
ऐसे मृत्तापूर्ण सिद्धांत शब्द निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका परंपरा की प्रमाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रमाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है तब उसने उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को ब्रह्म गंतव्य तक ले जा सकते हैं।
छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, आपने कलकत्ता का टिकट खरीदा कलकत्ता जाओगे तो जहाँ की कर रहे हो वहीं पहुंचोगे, यांति देव काम देव तो हर किसी की भी भक्ति करके आप एक ही जगह कैसे जा सकते हो, कि कोई भी टिकट लेके एक ही जगह जा सकते हो, कहीं का भी खरीद लो वहीं पहुंच जाओगे, नहीं जहाँ जाना वहीं पहुंचोगे।
ऐसे संचालित तथा समझौतावादी प्रस्ताव अन्य मूल प्राणियों को आकर्षित करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं लेकिन वैदिक आदर्श से उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो गुरु से परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है तब तक उसे असली वस्तु यथारूप से प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं,
ये क्या कहते हैं सब लोग कर देते श्लोक पे, हम देख कहते हैं एक नंबर पर
ये परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजऋषियों से इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है।
आगे बढ़िए और ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या जानते हैं इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंपरा का बहुत महत्व हो कई बार चर्चा हो चुकी है। आगे बढ़े।
जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत की परिभाषा भगवत गीता में दी गई है लिख हो चुके थे, अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके ये परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी।
अच्छा अर्जुन से परंपरा प्रारंभ हुई भगवान लिखे ना अर्जुन से, हमारे भगवद गीता में 32 नाम दिए गए शुरुआत में, ये है ना प्रभुपाद के नाम के साथ। अर्जुन का नाम है
राजऋषियों की परंपरा अलग
जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र का भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया बाकी भगवत गीता 4.3 की क्योंकि अर्जुन उसका भक्त था मित्र था ये भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो कोई अर्जुन के साथ पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है।
अर्जुन के पद का अनुगमन कैसे हो सकता है, हम कैसे मित्र बन सकते हैं, हम तो कृष्ण नहीं है, कैसे फ्रेंडशिप करें। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता समझी वैसे हमें समझना है भगवत गीता। यस आगे बढ़े।
वर्तमान समय में भव्य संवाद के अनेक वाक्यकार तथा अनुवादक हैं, जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार ना तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं ना ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं।
एक बार हमारे मंदिर में कोई व्यक्ति आए थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छी बात पर थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, वो किसी कारण से आए थे, मतलब ऐसा हो गया था कि एक व्यक्ति बालक ब्रह्मचारी बनने आया था तो उसके पेरेंट्स के साथ आए थे उसको लेकर, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। तो हमें कहते थे कि अरे कृष्ण की कुछ बात हुई, क्योंकि कृष्ण ही भगवान थोड़ी भगवान तो और भी कहीं, और फिर ऐसी बातचीत होते होते हमसे कहने लगे मैं आपको भगवद्गीता आपसे अच्छा समझा सकता हूँ। तो हमने कहा जब आपको यही नहीं पता भगवद्गीता पढ़कर कि कौन भगवान है तो आप हमसे क्या अच्छा हमको समझाएंगे, मतलब भगवद्गीता सारी बोले मैं आपको बहुत पूरी भगवद्गीता जानता हूँ बहुत अच्छे से समझा, पूरी भगवद्गीता जानते समझा सकते लेकिन यही नहीं जानते कि कृष्ण भगवान। तो ये व्याख्या है, ये सारी व्याख्या कर लीजिए और भगवान को गायब कर दीजिए, राम राज्य चाहिए राम नहीं चाहिए। आगे बढ़िए।
कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे हिंदू छोरों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7.2 और 3 में कहा गया अंत गोत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं को शरण ग्रहण करे। भगवदगीता 18.66 जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं केवल वे ही भगवान में अपना विश्वास श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपने तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पद से इस भ्रम के कारण विपद हो जाएंगे कि सारे पद एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं।
yes. तो इसके बाद से जो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हम बता रहे थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारणों के कारण है, इसके विषय में कई उपनिषदों से भगवद्गीता से अन्य स्थानों से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसको लिख पढ़कर ये जो यहाँ से शुरू होगा ईश उपनिषद के इस मंत्र में, यहाँ से लेकर जो आगे दो पेज के आगे एक पैराग्राफ शुरू होता है जहाँ लिखा गया है कि श्री ईश उपनिषद हमें मूल को जल देने का जड़ को सींचने का, तो वहाँ उस पैराग्राफ तक आपको पढ़कर, ये हम लोग कल नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है और जो जो प्रभुपाद ने समझाया है किस तरह ये जो भगवान कृष्ण ही पूर्ण सत्य हैं उनको अच्छी तरह से माफ करना है। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि श्री ईश्वर जड़ को सींचने की हमें सलाह देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल पढ़ना चालू करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वैसे आप लोग बहुत समय पर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए थोड़ा और जल्दी आ जाए, 7:30 का समय है, 9:30 तक है, लेकिन जल्दी बातें करना पड़ता है क्योंकि आप लोग जाना चाहते हैं, तो प्रायः 1 घंटा ही निकल आता है, तो थोड़ा जल्दी आ जाए।